अभी हम लोगों के वृंदावन के पंडा जी और उनके सुपुत्र आए हुए हैं और पंडा ऑफ वृंदावन फादर एंड सन बोथ हैव कम देयर फोर फादर्स वेयर पंडाज ऑफ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टाइम स्टिल दे आर कमिंग. ये लोग भक्ति विनोद ठाकुर के समय से ही इनके पिताजी के पिताजी और सब लोग हमारे गौड़ीय मठ के पंडे हैं, इसलिए हम लोगों को आने पर पथ प्रदर्शन करते हैं, वृंदावन में दर्शन इत्यादि कराते हैं और हम लोग भी इनको सम्मान देते हैं. वी ऑनर देम.
आपने बोलते हैं ये ट्रांसलेशन होते
हैं. सो टुडे इन बिहाफ ऑफ ऑल और यात्रीज डिवोटी आई एम ऑनरिंग हिम. धोती आरे थी
माला दिखती सब दिखती.
ये पंडा जी आपके सामने है.
पांच हजार पांच
साल की साल कुछ बढ़ाया साल की साल कुछ बढ़ाया
अरे जोर से बोलो.
मैं कह रहा हूँ साल की साल कुछ बढ़ाया करो तो तेजी महंगाई भी बहुत हो गई है और ठाकुर जी का मंदिर बन जाए. आप कल आइए सर में
देखें
कुछ हो सा नहीं
उसी में समझते तो ये पीछे आपको हम तो सब समय तो देते ही रहते हैं.
आपकी बात एक मिनट बात करूँ. बाहुल महाराज केशव महाराज की हालत बहुत खराब थी.
मैं सुन रहा था
केशव महाराज की
लगा भी लागल मुझे.
बामन महाराज की बहुत हालत खराब थी.
आप संतोष से फिर आपको दिया
नहीं एक मिनट लीजिए. हालत बहुत खराब थी.
बोला मुझे लगान अपनी तो लगान आगे
दे दिया एलाव कर दो जो आज मैं उस दिन देखा था नहीं आशीर्वाद देने आया आपके बेचारे ने किसी ने मुझे डाल दिया. मेरे मन में बड़ा तक हुआ मेरे मन में बड़ा और बेचारे ने एलाव नहीं किया.
आप लोग संतोष नहीं होंगे मैं जानता हूँ. अब हम लोग आरंभ करेंगे. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय अंगश्यामलिं छटाभिरहितो मन्दे कृतेन्दीवरा జడ్డంజాబుదరోచి సంబిదల సంపట్టంబరస్ శ్రియా బృందానంద నివాసినం భదిల సద్దామాభిరామో రాధాస్కంద నివేశితోజ్జల భుజం ధ్యాయేందాం. శ్రీ గురు గరాంగ గంధార్వికా రాధా వినోద్ బిహారీ జీ కి కృపా సే ఆజ 12 దిన్ హో గయే వృందావన్ మే ఔర్ మథురా మే 5-7 దిన్ పహలే సే అబ్ తక్ నిర్విఘ్న రూప్ మే ఔర్ అచ్చీ తరహ సే హమారీ పరికర్మా చల్ రహీ హై. కుచ్ లోగో కో సర్దీ జుఖామ్ ఔర్ బుఖార్ హో గయా హై, ఉస్కే లియే భీ డాక్టర్ హై, సావధానీ సే రహనా చాహియే జైసే కి నా హో. శ్రీ శ్రీ మాధుర్య కాదంబిని కుచ్ లో జ్ఞాన కో భక్తి కా సాధక బతలాతే హై, జ్ఞాన నహీ హోనే సే భక్తి నహీ హోగా. ఉన్కే అనుసార్ మే ఆత్మతత్వ ఔర్ పరతత్వ కా జ్ఞాన హోనా జరూరీ హై. ఆత్మతత్వ ఔర్ పరతత్వ కా జ్ఞాన హోనా జరూరీ హై. జ్ఞాన కే బినా వస్తుత భక్తి మే ప్రవృత్తి నహీ హోతీ, క్యోంకి భక్తి కే సాధన మే భలే హీ దూసరీ సాధనాఓ కీ ఆవశ్యకతా నహీ హై, ఫిర్ భీ జ్ఞాన కో భక్తి కా సాధక మాన్నే కే అతిరిక్త కోయి దూసరా ఉపాయ నహీ. ఔర్ కుచ్ నా హో, ఆత్మతత్వ ఔర్ పరమాతత్వ కా జ్ఞాన హోనా చాహియే. ज्ञान के संबंध में बतला रहे हैं, ज्ञान शब्द से ब्रह्म के तीन अंग माने जाते हैं, तत्पदार्थ का ज्ञान, तंग पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म परब्रह्म और जीव के परस्पर संबंध का ज्ञान. तत्पदार्थ का ज्ञान, तत् माने भगवान, परतत्व परतत्व के स्वरूप भजनीय श्री कृष्ण विषय ज्ञान, पर ब्रह्म श्री कृष्ण साकार है, सविग्रह तत्व है, सचिदानंदमयत्व है, उनकी स्वयं भगवत्ता है, नाराकृति पर ब्रह्मत्व उनका है, अखिल रसामिश सिंधु है, अनंत सौंदर्य माधुर्य के पराकाष्ठा है, उनमें वे बहुत प्रकार की मधुर लीलाओं को करते हैं, कारुण्य भक्त वात्सल्य इत्यादि गुण इनका धाम, इनका परिकर, इनकी स्वरूप शक्ति माया शक्ति विषय ज्ञान को तत्पदार्थ का ज्ञान करते हैं. ये होना जरूरी भी है. तंग पदार्थ का ज्ञान, तंग माने जीव तत्व, जीव विषय ज्ञान, जीव के जीव चित्तगण है, वही उसका जो स्वरूप तत्व है वह अष्टाचास शक्ति से उत्पन्न है, विभिन्नांश तत्व है, कृष्ण के नित्य दास हैं, उनका अणु स्वातंत्र भी है. इन सब ज्ञानों को मिलाकर के तंग पदार्थ का ज्ञान, और दोनों के संबंध में ज्ञान, परतत्व श्री कृष्ण प्रभु हैं, जीव इनका नित्य दास है, कृष्ण विभु हैं और जीव अणु है, कृष्ण मायाधीश हैं और जीव माया के बस योग्य है. श्री कृष्ण पाद पद्म की विस्मृति ही जीवों को माया का बंधन आता से दुख का कारण, श्री कृष्ण भजन ही माया मुक्ति और परमानंद का एकमात्र प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ज्ञान को उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध ज्ञान है। कोई कोई ब्रह्म और जीव के ऐक्य विषय ज्ञान की बात कहते हैं, वे पर ब्रह्म की शक्ति या साकार उनके सविशेष रूप को नहीं स्वीकार करते। उनके विचार से ब्रह्म निर्विशेष है, कोई गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, है? और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म साइज मुक्ति जीवों के लिए ही चरम साध्य है। ये लोग क्षुद्र जीवों को परम ब्रह्म सविशेष पर ब्रह्म श्री कृष्ण राम आदि को माया उपाधि धारी इत्यादि करने के कारण ये मां भगवत चरणों में अपराधी हैं। विशेष करके जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान भक्ति का विरोधी है, इसलिए सर्वसार त्याज्य है। सत्संग भक्ति साधन का एक मुख्य अंग है। किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से साधु संग में उनके मुख से निरंतर विगलित भगवत कथा श्रवण करने से साधकों के हृदय में ये तीनों प्रकार के ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। पृथक रूप में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, पृथक रूप से प्रयास करने से के लिए हमारे जीव गोस्वामी ने भी, सब लोगों ने इसको शास्त्रकारों ने भी मना किया है। श्रीलरूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग के अवरोधी होने पर, माने बाधा देने वाले होने पर, अनुकूल होने पर, अविरोधी होने पर भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए थोड़े से उपकारी होते हैं। भक्ति में प्रवेश हो जाए तो फिर ज्ञान वैराग्य की तनिक भी कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव ज्ञान वैराग्य भक्ति के कदापि अंग नहीं है। महापुरुषों के विचार से भक्ति के में प्रवेश के पश्चात ज्ञान वैराग्य रहने से चित्त कठोर हो जाता है। भक्ति देवी अत्यंत कोमल है, इसलिए कोमल स्वभाव वाली भक्ति भक्ति में प्रवेश का कारण है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखागितां भवदीय वर्तान स्थाने स्थिता स्तुतिगतां तन्वांग मनोभी प्रायशो अजित जीतो त्रैलोक्य। ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, हे अजित, जो लोग विश्व में आपके स्वरूप ऐश्वर्य महात्मा आदि ज्ञान के लिए लेश मात्र भी प्रयास नहीं करते, आपके भक्तों को निकट रहकर तो उनके मुख से विगलित होने से आपके नाम रूप गुण लीला तन मन वचन से सेवन करने से और जो सेवन करते हैं आप प्राय अजित होने पर भी उन लोगों के भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं इसकी व्याख्या में, ज्ञाने उपास्य परतत्व के ज्ञान के लिए, तम पदार्थ के ज्ञान के लिए भी प्रयास कर मत करो। निर्विशेष ज्ञान है तो ये तो सर्वथा उपेक्षणीय ही है, किंतु भगवान का परतत्व इत्यादि ज्ञान जानने की पृथक रूप से जरूरत नहीं। संतों के मुख से हरि कथा भगवान की लीला कथाएं होने पर अपने आप इन सब चीजों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसलेट,
so today is the 12th day of our parikrama in Vrindavan. And before that we had 10 days in Mathura also. Except for some slight disturbance from some cold and fever, for which doctor is available, we have had no special problems. Shiva Durji Kadambini. Some people think, without knowledge, without jnana, there is no possibility of bhakti. Or some others think that jnana, attainment of knowledge, is also an anga or a limb of devotion. There was this discussion about this topic. Is this true? Therefore, knowledge of the Atma, the individual jiva, and knowledge of Paratattva Bhagavan is necessary for bhakti. Even though bhakti is independent, still, in the beginning stages, we'll need some foundation of some knowledge. Therefore, Bhagavan, there are three types of jnana that are accepted in relationship to bhakti. That is tatpadatta jnana, tvampadatta jnana, and the relationship between both. Tatpadatta jnana means that knowledge in relationship to Krishna. In brief, he is swarat, self, he is self-manifest, self-illuminating and independent. He is the Parabrahma, the Supreme Absolute Truth. But at the same time, he is the Akhila Rasamrita Murti, the Supreme Enjoyer of all transcendental mellows. That Sri Krishna is Swayam Bhagavan. He is the topmost limit of both opulence and sweetness. He performs varieties of pastimes in his own abode with his own devotees, his own associates. He is full of transcendental qualities, especially Bhakta Vatsalya, being affectionate to his devotees. And he is endowed with numerous potencies, especially his Swarup Shakti. That is Tatpadat Gyan. Secondly, Tvampadat Gyan is in relationship to the individual soul, the Jivatma. The Jivatma is Chitkan, a minute transcendental particle. He is Vivanansatapra. He is part and parcel, eternally separated from the Lord, despite being no different from Him. And He is Anusvatantra. The Supreme Lord is completely independent, but the Jivatma also has some independence, but Anusvatantra, very small. And third, what is the relationship between the Supreme Lord Krishna and the individual soul? This is the third type of knowledge. In brief, Krishna is the master, the Jivatma is the servant. Krishna is Vibhu, unlimited, and the Jivatma is Anu, minute. Bhagavan is Mayadish, always beyond the control of Maya, and the Jivatma, forgetting Krishna, can be bound by Maya. Therefore, the service to Krishna is the only relief, the only method for the Jivatma to achieve liberation from Maya. Therefore, the relationship between Bhagavan and the Jiva is called Sambandha Gyan. But there is a fourth type of knowledge which is rejected, which is a falsity, Brahma Atma Oikya Surupa Gyan. That is propounded by the Mayavadis and Advaitavadis, who say that Bhagavan, there is no transcendental qualities in Parabrahma. He is Nirvishesh. They say there is no difference between Jiva and Brahma, but this is completely false. The insignificant Jiva, Atma, how it can be considered to be the same as Bhagavan, this is complete falsity. Such persons who propound such a theory are offenders at the feet of Lotus feet of Krishna, and they are also, this idea is completely against to the conception of bhakti. Therefore, satsanga is the main limb of devotion. We should hear from that independent Mahapurush, the great Mahabhagavat. By hearing Lila Katha from their mouth, by hearing Hari Katha, these three types of knowledge, Tatpadat Gyan, Tvampadat Gyan, and the relationship between them is achieved automatically. There is no need for any separate endeavor to achieve these types of knowledge except from hearing Hari Katha from the mouth of Vaishnavas. Therefore, Sri Rupa Goswami discusses even though Gyan and Vairagya are not really parts, limbs of devotion, still in the beginning stages, they can be a little favorable. They can be accepted to a partial degree in order to enter into bhakti. But once one has entered into bhakti, the Gyan and Vairagya become completely unnecessary because they manifest automatically as servants of Bhakti Devi. Therefore, Gyan, knowledge and renunciation make the heart very hard, and Bhakti Devi is very soft. Therefore, Brahmaji has prayed in his prayers, Gyane Kayasam Ugapashyana Mantra Eva Jivanti Sapmakaratam Baladiya Vatam Stane Stita Shrikatam Tanumatmano Vir Aprayaso Jivajito Aprayaso Ajita Jito Slavis Pais Chilokya. Therefore, Brahmaji has said, there is no need to endeavor for knowledge or renunciation. Hey Bhagavan, your devotees who hear from those who hear from your devotees, they never try independently for the attainment of knowledge. Instead, by performing seva to the kirtan of your name, form, qualities and pastimes, even though you are uncontrollable, you become controlled by such a srota, by such a hero. Therefore, that nirvishesh jnana, which propounds the non-difference between jiva and brahm, is completely contemptible and completely rejectable in all ways. Therefore, devotees make no separate endeavor for all this, Jiva Goswami is saying. By hearing Harikatha, we achieve renunciation and knowledge automatically.
Atayev, aapke vyakti hi ज्ञान को भक्ति का साधक कहते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं कहते हैं। अरे ज्ञान की तो बात क्या है, ज्ञान के द्वारा जो साध्य वस्तु है मुक्ति, उसकी अपेक्षा ही भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन हुआ है। राजन पतिर गुरु अलंग भवतांग जदूना इत्यादि में मुक्ति ददाति कर ही चितस्मान भक्ति योगस। हे परीक्षित, भगवान मुकुंद स्वयं पांडवों और जदवंशों के स्वामी, गुरु, इष्ट देव, सुहित, कुलपति और पालक थे। वे कभी कभी उनके आज्ञाकारी दास भी हो जाते थे, परंतु भगवान ऐसे जनहितकारी होते हुए भी भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, किंतु प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं, नहीं देते हैं। मुक्ति सहज है, प्रेमभक्ति बहुत ही गंभीर है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि भागवत के श्रवण करते समय महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमारे पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है। मन ही मन में खेद करने लगे। उस समय सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझ करके मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन करके बोले, क्या सुखदेव, जिस कुल में भगवान का अवतार होता है, उस कुल की अपेक्षा जिस कुल में भक्ति का या भक्त का अवतार होता है, वो कुल श्रेष्ठ है। भगवान के अवतार जिस कुल में होता है, उससे श्रेष्ठ है जहां पर कि भक्तों का अवतार होता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा वशीभूत होता है। ऐसे किसी के कुल में जन्म निश्चय नहीं होता है, इसलिए पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है, यह बात ठीक है, किंतु उसमें भक्त का अवतार हुआ है। पांडव लोग उसमें जन्म लिए हैं, जिनके यहां भगवान जाते हैं और उनके आदेश को पालन करते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं, पानी पिलाते हैं, रथ हाँकते हैं और सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सौभाग्य है, ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि दूत का कार्य करते हुए उनके दास भी हुए हैं। भक्ति व्यतीत किसी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। क्यों? भगवान उपासकों को भले ही मुक्ति दे दिया करते हैं, उनका नाम मुकुंद है, किंतु प्रेम भक्ति को जरा छिपा करके रखते। किसी किसी का कहना है भक्ति देने से भक्ति के वशीभूत हो जाएंगे भक्तों के, इसलिए उनको कष्ट होगा, किंतु बात गलत है। भक्ति क्या है? आनंदमय वृत्ति है कृष्ण की, फलादरी शक्ति, ये भक्ति है। इसलिए भगवान को उसमें आनंद ही होता है, भक्त के वशीभूत होने में उनको कोई कष्ट नहीं होता है। यहां पर इस श्लोक में मुक्ति ददात कर ही चित, कभी माने क्या, भगवान सब समय सभी भक्तों को प्रेम भक्ति दान नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जब तक प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा नहीं जग जाती और उसमें कुछ कामना वासना उसके हृदय में रख, तब तक नहीं देते हैं, किंतु भक्त जब योग्य हो जाता है तब तो उसको देते हैं प्रेम। जैसे उदाहरण देकर के कहा है, स्नेहमयी जननी जिस प्रकार अपने रोगी संतान के लिए रसगुल्ला खीर छिपा करके रखती है, उसको नहीं देती, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको देती है, और इसका फिर स्वास्थ्य ठीक होने पर इसको देगी, इसमें दया है, क्योंकि वो हजम नहीं कर सकता। ऐसे जिसके अंदर में कामना वासना है, हरिनाम करते हैं हमको रुपया है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो छेद के बहाने भक्ति वहां से निकल जाती है और उसको धन इत्यादि प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसलिए खबरदार, हरिनाम करते समय इन चीजों से सब समय दूर रहना, कभी प्रतिष्ठा की, रुपए की और कोई चिंता हृदय में नहीं आने पाए। हाँ,
therefore some foolish people think that jnana and vairagya are limbs of devotion, but an intelligent person will never say so. Therefore mukti, Brahma, becoming one with Krishna, is rejectable always, and Srimad Bhagavatam has rejected that from the beginning. Therefore Buddha is speaking very fast. Therefore Sukadeva Goswami said, hey Pariksit Ji, Krishna, who is the Sudhi, the well-wisher, the Palak, the maintainer, the Raksha, the protector and the master of the Yadavs and the Pandav dynasties. What else could remain for you? Therefore Krishna easily gives mukti, but prema bhakti he remains, he keeps covered. Therefore mukti is easily attained, but this prema bhakti is supremely rare and not attained so easily. Therefore Pariksit Maharaj, he said, O Gurudev, and it seems that no avatar Bhagavan has appeared in the Puru dynasty. Therefore, Sukadeva Goswami, understanding the mind of Pariksit Maharaj, because Pariksit Maharaj is in that dynasty, he said, no problem. Because Bhagavan is not so much concerned with the dynasty, he is rather concerned with the bhakti in the heart of the devotee. Therefore, Pariksit, in the dynasty of Puru, many great devotees have appeared, especially the Pandavas. What to speak of Krishna appearing in a dynasty, Krishna served the Pandavas by massaging his horses, by becoming their messenger, by doing many, many different types of seva. Therefore, Krishna served the Pandavas. Therefore, he showed he is only controlled by pure devotion. Krishna has no concern with this dynasty or that dynasty. Therefore, Mukunda, one name for Krishna is Mukunda because he gives mukti. But bhakti, he keeps a little bit covered. Some people think Krishna keeps bhakti covered because if Krishna is controlled by his devotee, then Krishna will suffer pain. But this is a very foolish thing. Because Bhakti gives extreme happiness to Krishna. And when Krishna is controlled by the pure devotee, he also receives great happiness. Therefore, the Krishna does not give devotee prema bhakti until the last. Until he sees that the devotee is not very restless and eager to achieve bhakti, then Krishna will not give it. But it's not that Krishna will never give it. When qualified, then Krishna will also give bhakti. The example is given here by Sri Krishna Chakravarti Thakur. The mother, she has a diseased son. Therefore, she has many rasgullas, sweet rice, malpuras, burfi. But she is not giving the son because the son is diseased, and if he takes that, then his disease will increase. But it's not that she has no intention to give. When the son is cured of disease, then she will happily give all these things because she is keeping them only for him anyway. Therefore, as long as there is some kamavasana, some material desire in the heart of the sadhak, while chanting Harinam, the sadhak may think of money, may think of women, may think of pratishta, then Krishna does not give prema bhakti because that devotee is unqualified and desires other things. Therefore, be very careful. When we chant Harinam, we should never think of women, money, name or fame. Otherwise, these things will come very easily, but prema bhakti will not come. Therefore, sarasampadam.
Hare Krishna. Sita Devi from England, she is waiting for the doctor. Srila Akinchan Maharaj is very, very sick. So doctor needs to go and attend him immediately. Prema Mai Devi from England. The doctor can go with her.
Ke bimara che?
Akinchan Maharaj.
Akinchan Maharaj.
Is Dr. Prem Mai here? If she is here, please contact Sita Devi from England.
England?
I don't know.
Dr. Prem Mai in the home? If I do something, what will you do?
Hare Krishna. Jagdish Prabhu, who served in kitchen and he had dispute with someone local person, please contact me. Thank you. Hare Krishna. Jagadish from America. Thank you.
Kishi kishi. Gyan pradhan shastro mein bhakti ki apeksha gyan ko shrestha batlaya gaya hai. उसके संबंध में बतला रहे हैं वामन अवतार में सर्वशक्तिमान और सब गुणशाली होते हुए भी भगवान उपेंद्र के रूप में इंद्र के छोटे भैया होकर इंद्र की सब प्रकार से पोषण करते हैं. भगवान तो सर्वशक्तिमान है किंतु वामन अवतार में इंद्र के छोटे भैया होकर के जन्म लिया और उनको उच्च आसन दिया करते हैं. तो इसमें भगवान की हीनता नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं. वे कृपा करके ऐसा करते हैं. उसी प्रकार से भक्ति देवी भी उन्नत हो करके कहीं पर ज्ञान अंग के रूप में दिखाई पड़ती है. ये उनकी कृपालुता है. क्यों? भक्ति नहीं रहने से कर्म योग इत्यादि कोई अपना फल नहीं दे सकता। ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर जी अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए भक्ति की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, जो लोग भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं, भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता, भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल इत्यादि शास्त्र वचनों में जो ज्ञान के साधक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की साधना करते हैं, वहां ज्ञानांग के रूप में भक्ति देनी रहती। यदि भक्ति न रहे तो ज्ञान अपना फल जो मुक्ति है वो नहीं दे सकता है, इसलिए वहां पर भक्ति गौण रूप होने से भी श्रेष्ठ है, इसी को बतला रहे हैं। वहां भक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से सिद्ध होगी, यहां पर ज्ञानंग के रूप में है। भागवत में ऐसी भक्ति को शास्त्र की कहा गया है, पहले बतला है। जो जिस भक्ति के द्वारा मुक्ति होती है वह भक्ति सत्य की है, अतः वह भक्ति का निर्गुणत्व किस प्रकार से प्रमाणित होगा, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी एक उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। आठवें स्कंद में वामन देव की लीला का वर्णन हुआ है। वामन देव परम स्वतंत्र सर्वशक्तिमान अप्राकृत सब गुण संपन्न होकर के स्वेच्छापूर्वक देवराज इंद्र के छोटे भैया हुए, और उन्होंने बलि महाराज के निकट उन्हीं के लिए इंद्र के लिए ही बलि महाराज के निकट त्रिपाद भूमि की भिक्षा ग्रहण करने से बहाने अपने दो पग से स्वर्ग और मर्त्य को नाप लिया, और महाराज बलि को पताल में भेज करके स्वर्ग इत्यादि का राज्य इंद्र को दे दिया, ने? उनका पालन पोषण किया। वामन देव उपेंद्र नाम ग्रहण करके उप इंद्र छोटे भाई के छोटे भाई बने, और इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता की भांति सदैव सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार उनका पालन पोषण करने से क्या विद्वज्जन उपेंद्र भगवान को सचमुच इंद्र की अपेक्षा छोटा समझेंगे? नहीं, ये भगवान की कृपालुता है। इसलिए भगवान वामन देव का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं, क्योंकि जीव साधन के द्वारा जितना भी महत्व की तरफ में बढ़ता है उतना ही उसके जीवत्व का विकास होता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं, उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता का भी विकास होता है। जितने भगवान भक्तों के वशीभूत होते जाएंगे उनकी भगवत्ता का चरम प्रकाश। गोपियों के सबसे अधिक वशीभूत हैं, उनकी भक्ति का अत्यंत पराकाष्ठा है। तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ भगवान ने इंद्र का छोटा भाई बनकर इंद्र की रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। विचार पूर्वक देखा जाए तो भगवान की इस लीला में उपेंद्र की इंद्र के प्रति करुणा ही दिखती है। भगवान स्वयं स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होकर के स्वेच्छापूर्वक इंद्र के छोटे भाई बने और अपने को उपेंद्र कहलाए, और इंद्र की प्रधानता दी, इसमें भगवान का कुछ भी अपकर्ष नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान प्रधान शास्त्रों में जो ज्ञान को भक्ति का साधक बतलाया गया है और भक्ति का अपकर्ष दिखलाया गया है, भक्ति दया करके उन्नत होते हुए भी उसके फल मुक्ति को प्रदान कराती है, इसलिए भक्ति का उपकर्ष अपकर्ष नहीं उत्कर्ष ही साबित होता है। बस
Therefore, in some shastras, we see, especially Gyan shastras, we see the predominance of the concept of liberation and the achievement of Gyan. In those shastras, it appears that Bhakti Devi is neglected and Mukti is established. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur gives a very, very refined analysis of this point. He says that Brahman Dev, despite being the independent Supreme Personality of Godhead endowed with unlimited potencies, still he appeared as Upendra, the small brother of Indra. It seemed that he took help from Indra, and he even gave a big seat to Indra. But still, this does not mean that Bhagavan Brahman had any shortage or was lacking anything. We should understand this is the mercy of Brahman Dev giving respect and position to Indra. Therefore, in the same way, we should understand that Bhakti Devi, she is predominant. But still, because of her mercy, she is giving some support to Gyan. Therefore, Bhakti is not attained as a result of Gyan and Karma. She is independent. But Gyan and Karma cannot give any results independent of Bhakti. Therefore, Bhakti Mishra Sadhan, when Bhakti is used as a sadhan, as a practice to achieve liberation, this is Bhakti Devi's mercy. Because without Bhakti Devi, no one can get liberation anywhere. Therefore, Bhakti out of her mercy remains as a limb of Gyan. But it doesn't, this is not the case. This is her mercy. Even though she is predominant, out of her independent desire, she can remain secondary to give the fruit of Mukti to the Gyanis. Therefore, Vishnu Chakravarti Thakur gives discussion here. Upendra. Upendra means the small Indra or the brother of Indra. Therefore, Bhagavan appeared as the small brother of Indra, and on behalf of Indra, he went to beg 3 steps of land from Bali Maharaj. Bali Maharaj had stolen the whole universe from Indra, including the heavenly planets. Therefore, on behalf of Bali Maharaj, Brahman Dev went there. Therefore, he begged 3 steps of land, for 2 steps of land, he took the whole universe. And he pushed Bali Maharaj down to Patalok. And he returned Swarga and the other planetary systems back to Indra. But we should not think that Bhagavan was really the small brother of Indra. He wasn't begging any chapatis from Indra. We should understand that he is independent and everything is possible for Bhagavan. But out of his mercy to Indra, he accepted a position. Therefore, this is the greatness of Bhagavan. That much Bhagavan is controlled by a devotee, that much he manifests he is being Bhagavan. Especially when he is controlled by the gopis, at that time he is Bhagavata, his quality of being the Supreme Personality of Godhead reaches its topmost limit. That was a good point. Therefore, in the same way, Bhakti is not dependent on Gyan. Gyan is dependent on Bhakti. But Bhakti, out of her mercy, accepts a secondary position, even though she is prominent, to mercifully give liberation to the Gyanis.
ॐ ज्ञानस्य ज्ञानं ज्ञान कलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः गुरवे गुरुशङ्करे राधिकाय फलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः सत्यनायन गोचरे कृतदास्तुजालाफलास्फुल्लकमलक्षण प्रणयकाधरश्रीमुखा न गौरचरणं जहासि कदापि भवतु लोकोत्तर ததாபதி பதனரி சங்க நிஸ்காரியமான பகத்தை கொண்டு வைக்கிற சிஸ்டர் நிச்சி வர முடியாது. They are hearing the word of Lotus Feet, Radha and Krishna, and finding newer and newer pleasure in them. Remember, whenever somehow I think of the mundane so-called pleasures of material sex life, I want my lips curled with his state, and I sit at the top. So this is the state of someone who has actually received the glory of Mahaprabhu's mercy. In sidelong glance of mercy, everything material becomes insignificant. The world appears full of happiness. Krishna Purnas Sutayate Admani Nivedan Suya Padekori Hoyna Paramasuke Jodi Ananandade, and therefore the rest is happiness. And then so-called great, powerful beings like Indra, Brahma, Rudra, they appear like insignificant insects. Therefore, the promotion of the Sarasatai is that Sagara Bhutarannakti Parabrahanti Mrityanti Vai Keshit Kundara Daiva Purandaraj Mahapekam Shapanto Mahu Someone in the beautiful festival of Chaitanya Mahaprabhu dancing, then like a great acharya and others there, as they dance, they appear to divide over the mountains and oceans, and these demigods appear very insignificant. So in this way, you can have some idea of the glory of Mahaprabhu's mercy. Of course, to get the glory of Mahaprabhu's mercy, I have no adhikar, but Gurudev, who has Chaitanya in his heart, he can give him. Therefore, we pray for his mercy on this day.
তো মহাপ্রভুজিকে অবদান কার সম্বন্ধে কুছ বলো।
हम लोग पूर्व वक्ता लोगों ने से सुने कि महाप्रभु कौन है, किस लिए महाप्रभु इस राधाम में आए। राधा कृष्ण मिले तनु श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए
माइक लगा करके
और किस लिए आए। राधा या प्रण महिमा के दृष्ट वहां अर्थात श्री विष्णु भानुनंदन के भावों को स्मरण कर आस्वादन करने के लिए विशेषकर मदनाथ महाभाव में जिस विश्वानुनंदनी जिस जातीय का आस्वादन करती थी उस आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही गौर कृष्ण बनकर आए और रसिक शेखर कृष्ण करुण परम करुण परम करुण के कारण करुणा के कारण उन्होंने उसी राधा जी की भावों की जो शोभा है जो संपत्ति है
अर्थात सीता देवी
रति
गंगा माता गोस्वामी
रति
गंगा माता गोस्वामी सीता देवी डॉक्टर ने
देने के लिए
महाप्रभु
आए
जे गंगा माता गोस्वामी
श्लोकों में समस्त शास्त्रों का सार भरा हुआ है। चेतो दर्पण माध्यम भव महादावा अग्नि निर्वापण श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम मुनि वर्णनम इत्यादि। अभी सुने कि महाप्रभु कैसे अपने अवदान कैसे शिक्षा दिए। हम लोगों का प्रश्न है कि इस शिक्षा से हम लोग कैसे जीवन को अपने को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहे चेतो दर्पण मार्जनम। हे जीव हे साधको पहले अपने चित्त रूपी द्रवण को साफ करो। साधक पूछता है हे प्रभु हे गुरुदेव हे वैष्णव हे साधुजन उस चित्त को कैसे साफ किया जाएगा। बाहर का दर्पण हो तो उसे साबुन से किसी सोडा से साफ किया जा सकता है परंतु हृदय रूपी चित्त कैसे साफ होगा। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामी कारी बहुदा निज सर्व शक्ति अर्थात संतों के संग में रहकर साधु संग में रहकर हरि कथा सुनते सुनते जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जब जीव गुरु पदाश्रय करता है और गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरुदेव जो अप्रकट वृंदावन से उत्कृष्ट सेवा भावना की जो सेवा भावना रूपी जो बीज को लेकर आते हैं उसी रूप में मंत्र के रूप में इसी बीज को साधक के हृदय में पवन कर देते हैं।
अनाउंस कुछ तो होने किसी अनाउंस अच्छा आज के
साधक के हृदय में बीज को पवन करने के बाद में श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा उसको सिंचन करते हैं। कैसे नाम करना चाहिए महाराज जी बोल रहे नाम नामी कारी बहुगा अनेक प्रकार के नाम है प्रमुख दो प्रकार के गौण और मुख्य नामों में भी जो राधा जी से गोपियों से संबंधित है ब्रज के नाम है वह मुख्य नाम है। इन नामों को जैसे ही हम लोग स्मरण करते हैं जैसे राधा दामोदर राधा दामोदर कहते ही राधा दामोदर की लीला कैसे हुई वे राधा जी के दाम में कैसे बधे वह लीला स्मरण हो आती है। राधा रमन राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ राधा गोविंद देव अर्थात इन नामों को स्मरण करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी नामों से सर्वोपरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र में समस्त नाम में जितने भी प्रकार के नाम हैं समस्त नाम इसके अंदर हैं। कैसे भगवान की श्याम सुंदर की राधा जी की श्याम सुंदर की लीला दो प्रकार की है विप्रलंब और मिलन दो ही प्रकार की लीला है किसी प्रकार की नहीं है। इस महामंत्र में दोनों प्रकार का है मंत्र हरे कृष्ण मिलनात्मक जैसे ही साधक हरे कृष्ण कहता है दो दिन पहले ही महाराज जी से श्री मुख से सुना परम देव मोक्षम न मोक्षम बधीवा न चान्य वीरण बलिदास पीहा उसमें कहते अवधि जो श्रवण कीर्तन है उसकी अवधि जो मोक्ष की जो अवधि है श्रवण कीर्तन उसमें भी हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देके बताया, हरिदास ठाकुर जी कैसे 3 लाख नाम जप करते थे और उसमें रूप गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी जी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी भाव बतलाया कि वे कैसा नाम करते थे, हरे कृष्ण कैसे ही अपनी स्मृति देह स्मृति हो जाती थी और साथ ही साथ नाम लेने के साथ ही साथ कैसे भाव राज्य में प्रवेश करके देह स्मृति को भूलकर शुद्ध रूप में राधा जी की सेवा में संलग्न रह जाते थे। इसके विषय में यदि हम लोगों को और ज्यादा जानकारी करनी है तो बिना पुष्पांजलि पढ़ें कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठकर इसी नाम का जाप करते 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 भूल जाते थे अपनी देह को और देह को भूल कर सिद्ध देह में अर्थात मंजिल रति मंजलि के रूप में श्री विष्णु हनुनंदन की कैसे मन से हर सेवा करते थे। ऐसे नाम को ये नाम उनकी संख्या को भी पता नहीं चलती थी कि घंटों उनकी समाधि लगी रहती थी। ऐसे नाम महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दी है साधक प्रारंभिक दशा में इस नाम को करे और कैसे करे, साधु संघ में रहकर निरंतर उसी नाम की चिंतन करता हुआ। अभी अभी हम लोग श्री गुरु जी के मुखारविंद से सुने कि नाम करते समय यदि संसार की कोई भी चिंता आई, कोई भी किसी भी प्रकार की, नाम देव तो सर्व वृक्ष है, सर्व तरु है, वे अपनी आप हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करके जो देने वाली वस्तु है उससे अंतर ध्यान को वंचित कर देंगे। इसलिए हम लोगों को अपने चित्त के दर्पण को साफ करना है जो गुरु पदार्थ कर करके सतत साधु संग में रहकर नाम करें, इससे चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भू महाधवाग्नि निर्वापण, जो हमारे तावा नल है, जो हृदय में सिर्फ ताप से हमारा हृदय जल रहा है, वह हृदय में शांति प्राप्त होगा नाम करने से, साधु संग करने से। धीरे धीरे तावा नल समाप्त होगी। सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, संसार तावा नल निर्वता त्राणाय करुणा गणागणत्व प्राप्त से कल्याण गुणा अवर्ण सर वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। गुरु महाराज जी कहते हैं संसार रूपी दावानल में जले हुए अपने साधक अपने शिष्य और शिष्या के हृदय में परम करुणा का संचार कर उस दावानल को जड़ से समाप्त कर प्रेम भक्ति पिलाकर उसे सुखी करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावेऽग्नि निर्वापणम, धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार से साधक अपनी भक्ति राज्य में प्रवेश करता जाता है उसका यह दावानल दूर होता चला जाता है। कैसे कैसे करना चाहिए भजन, तृतीय श्लोक में कहते हैं प्राण अपनी सुनी चेन तरो अपनी शही सुनना अमाली नाम मान देना कीर्तन या सदा हरी। हम लोगों को कैसे भजन करना चाहिए इसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कहते तरुण से भी हम लोगों को स्वच्छ समझकर। एक बात महाराज जी की स्मरण हुआती है, हम लोग मैं अपनी बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो हम लोग अपनी मैं दिखाते ना दिन का ये सब कपटता है, सचमुच दैन्यता कब हृदय में आएगी, दीनता कब हृदय में आएगी, जब भक्ति देवी हृदय में पदार्पण करती है स्वतः ही दीनता हृदय में आ जाती है, स्वतः ही तनाजी सभी सुनिश्चित समझने लगता है। प्रातकाल की सभा में हम लोग सुने कि महाप्रभु कहते हैं ना प्रेम गंदो गंदो अभी दरार अभी में, कैसे प्रेम की भी गंध नहीं है ये कौन कहेगा। यदि इस बात को हम लोग कहें तो परम दाम्भिक है, हम लोग ऊपर से कहते हैं, परंतु महाप्रभु इस बात को क्योंकि महाप्रभु इस भाव को कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वे तो भक्ति के दाता है प्रदाता है, उनके लिए ये बात सार्थक है। अर्थात जैसे जैसे भक्ति हृदय में आती है वैसे ही वैसे यह श्लोक में साधक प्रतिष्ठित होने लगता है। प्रणादी सुनी चेन तरुण की सही सुनना, सही शक्ति आ जाती है उसमें, अमानी नाम हमेशा ही दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान की इच्छा न करके नाम कीर्तन में लगा रहता है। कब तो होता है ये, जब कम से कम साधक रुचि स्थिति में आ जाता है तब इसकी कुछ कुछ झलक, इस श्लोक की कुछ कुछ झलक साधक के हृदय में प्रतिबिंबित होने लगती है। जब हम लोग प्राण की सुनते करोड़ों की शनि सुनना अमानी न मानो देने के कन्या सदा हरी इस श्लोक में प्रतिष्ठित होकर भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब क्या होता है श्री कैरव चंद्रिका जैसे रात्रि में चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी खिल जाती है और सूर्य के निकलने पर कमल अपने आप में खिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हृदय में नाम रूपी सूर्य हृदय में उदित होने लगते हैं तब हृदय की अंधकारता अज्ञानता दूर होकर हृदय खिलने लगता है। भक्ति भक्ति रूपी जो गुरु जी बीज दिए हैं वह प्रस्फुटित होकर खिलने लगता है, उसमें सुगंध आने लगती है। किस प्रकार की सुगंध? भगवत अनुभूति की कुछ कुछ भगवत पहले तो भगवत अनुभूति तो पीछे हो गई, उस समय अपने गुरु की अपने वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि होने लगती है। हम लोग गुरु कृपा की उपलब्धि नहीं करते, वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि नहीं करते और कहते हैं हमको कृपा करिएगा कृपा करिएगा। अगर सचमुच हृदय से स्मरण करें कि कहाँ हम लोग कीड़े थे, नरक के कीड़े थे, संसार में डूबे हुए थे, वहाँ से बाल पकड़ कर खींच कर न चाहते हुए लाए हैं गुरु वैष्णव और हम लोगों को भक्ति रस पिलाकर दिखला रहे हैं कि देखो यह कितना सुखमय जीवन है। ये जब हम लोग उपलब्धि करते हैं इसकी अनुभूति थोड़ी थोड़ी इसी करने लगते हैं, जब श्री कैरव चंद्र का वितरण
बसों का समय बदल कर
लगता है,
उसमें बसों का समय बदल कर
कमक आने लगती है। जैसे तुम्हारी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे छोटी सी कली है फूल की और सब खिलती है
50 बार
चलो
50 बार
खिलती है तभी उसमें सुगंध आती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी कली है वह नाम रूपी सूर्य के उदय होने पर
स्थिति में लोग सामान
लेने लगती है और वह गमकने लगती है।
आप भजन करेंगे
महाराज जी का उदाहरण देखो कैसे गमकी के
उस प्रवचन जरूर करें
जरूर करें। हाँ तो 15
कमल के सुगंध से कितने
बदलते थे
हमारा रूप भी हम लोग मंडरा रहे हैं उस सुगंध के आस्वादन करने के लिए।
पहले था जी यहाँ पर भोजन करके 10 बजे के करीब हो
जाए
ठीक था
ठीक नहीं था पहले शुरू में भी मैंने सुबह यहाँ से
7 बजे तक में निकल गया तो नाश्ता जो है उसके बिना वह रह नहीं सकता। वह कुछ भी हो
लोग अनाउंस कर सकते हैं अनाउंस करते हैं कि लोग अनाउंस करते हैं लोग सामान लेके आएंगे अब नजीब
जाओ
जैसे ऐसे में फिर प्रवचन करने से जो सामान का
रखा तो कल की क्लास ना हो
तो बहुत हम प्रवचन नहीं करेंगे फिर जैसे सामान लेके आएंगे तो प्रवचन ना ही
यदि आप उसे देना चाहते हो तो क्या दीजिए।
हम नियम नहीं तोड़ना चाहते
ठीक है
अब तुम लोग हमारा नियम तोड़ा है
क्या दीजिए क्लास हो जाए हम वही दीजिए कि आपके देह में तड़प तड़प कर हम लोग भजन करें तड़पन आए कैसे उत्कंठा आए कैसे हम ठाकुर जी के वैष्णव के भावों में विभावित होकर कैसे भजन करें। भजन की उत्कंठा हृदय में जगने लगती है तब उसको यथार्थ में समझ में आता है कि यदि धन जन परिवार मिला भजन करते मैं तो समझ लेना ठाकुर जी हमको अपने मूल धन से वंचित करके एक जड़ीय चीज देकर वंचित कर दिया है। परंतु सावधान शिक्षा जगत महाप्रभु की धारा में आकर संतों के संग में रहकर यह कम होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है स्वभावतः ही युक्त वैराग आने लगता है। जैसा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में देखते हैं शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी अद्वैताचार्य जी के घर पर पहुँचते जब महाप्रभु संन्यास लेकर पहुँचते हैं पहली बार तो महाप्रभु 10 दिन रहते हैं दास गोस्वामी जी वहाँ 10 दिन रहते हैं। 10 दिन के बाद में महाप्रभु को जगन्नाथपुरी माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा जय जय प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब प्रभु बहुत सुंदर निर्देश और आदेश दिए हैं महाप्रभु ने वह हमारे लिए पालनीय है बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में। क्या उपदेश दिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्थिर भैया कर जाओ ना हो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल अंतर करो निष्ठा बाजी लोक महिभार अच्छी रात कृष्ण कुमार कोरविन उद्धार। हे रघुनाथ तुम पागल मत बनो मानो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्यार से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग साधु संघ में शुरू शुरू में आ जाते हैं पहला पागलपन चढ़ता है घर छोड़ देते हैं बाहर छोड़ देते हैं और घर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर दे या कोई सेवा छोटी सेवा बता दी तो कहते हैं हाँ हम इतने बड़े घराने के बच्चे हैं ऐसा करेंगे समझ होते रहेंगे और यहाँ से मन खराब होने लगता है और भाग कर फिर हम लोग संसार में चले जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा मौका इससे भैया घर जाओ ना होगा तो उनका मतलब भी पाए लोग महाराज ने हमको कह दिया रोकने के लिए बस उसको खड़ा करके करते हो। अर्थात हम लोगों को स्थिर रहकर भजन करना चाहिए, यही महाप्रभु की शिक्षा है। दूसरी बार महाप्रभु फिर रघुनाथ गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। यदि इस शिक्षा में हम लोग प्रति ठीक हो गए तो भजन बन जाएगा, फिर भजन हमसे दूर नहीं है। क्या शिक्षा दी? इन भालू न खाइए, भालू न पहिरे, अमानी मानस ऐसी लाइन रह गई है। ग्राम कथा कही में ना सुनी वे, अर्थात हे रघुनाथ तुम मुझसे पूछना। रघुनाथ दास को समझी था जो पूछते चले प्रभु आपने मेरा घर क्यों छुड़ा दिया, क्या करना चाहते मुझे। रघुनाथ दास को समझी को कहते हैं हे रघुनाथ सबसे पहले यदि भजन करना चाहते हो तो क्या करो, ग्राम कथा ना कही वे। इसी बात को रुको गोस्वामी जी को देखना वृत्त में कहते हैं निंदा आती सुंदरम संग लब्धा, किसका संग प्राप्त करो जो किसी का दोष नहीं देखता है। वो ही बुराई करेगा दूसरों की भलाई करेगा, वो ही करेगा जिसके पास साधन भजन में कमी है, साधन भजन अच्छे से नहीं करता। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे अपनी भगवान के भजन में साधन में सेवा में अपनी एनर्जी नहीं देता है, उसी को ये दोष और सब दिखाई देते हैं। रघुनाथ तुम सावधानी से कभी भी जीवन में राम कथा नहीं करना। क्यों? राम कथा जिसकी भी हम लोग क्रिटिसाइज बुराई करते हैं क्या होता है, बुराई करने वाला पवित्र हो जाता है, करने वाले के सारे वैसे ही वो विचार मलिन होता है और उससे साफ करके अपनी और मलिनता को बढ़ा लेता है। अर्थात ना सुनना और ना कहना, भालो ना खाए हुए भालो ना कहे हुए। भालो माने अच्छे अच्छे जो मन में आ रहा है जीवा को देते चले जाओ, क्या होगी जीवा अजितेंद्रिय हो जाएगी, भजन में नहीं लग पाएगी और भजन से निकली और बस रसातल में भक्ति से चुत कर देगी। और क्या करना है, सदा कृष्ण नाम नहीं वे। और ये रघुनाथ इससे ज्यादा पूछना तो समूह से पूछ लेना। ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं। मानो रघुनाथ जी को नहीं महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा दी है कैसे हम लोगों को भजन करना चाहिए, संबंध युक्त अनर्थ रहित भजन करने से अति शीघ्र ही हृदय पवित्र होता है, उसमें राधा कृष्ण की लाभ का स्मरण होता है। इसी शब्दों के साथ अपनी भक्ति का काम कर
Hare Krishna, there is an announcement. The Sandwala is saying that the devotees have taken chair and
departments which save liberation from Maya. Therefore the relationship between Bhagavan and the Jeev is called Sambandha Gyan. But there is a fourth type of knowledge which is rejected, which is a falsity, Brahma Atma Oikya Surupa Gyan. That is propounded by the Maya bodies and Advaita bodies who say that Bhagavan, there is no transcendental qualities in Parabrahm. He is Nirvishesh. They say there is no difference between Jiva and Brahm, but this is completely false. The insignificant Jiva, Atma, how he can be considered to be the same as Bhagavan, this is complete falsity. Such persons who propound such a theory are offenders at the feet of lotus feet of Krishna, and they are also, this idea is completely against to the conception of bhakti. Therefore, satsanga is the main limb of devotion. We should hear from that independent Mahapurush, the great Mahabhagavat. By hearing Lila Katha from their mouth, by hearing Hari Katha, these three types of knowledge, Tatpadat Gyan, Tvampadat Gyan, and the relationship between them is achieved automatically. There is no need for any separate endeavor to achieve these types of knowledge except from hearing Harikatha from the mouth of Vaishnavas. Therefore, Sri Rupa Goswami discusses, even though Gyan and Vairagya are not really parts, limbs of devotion, still in the beginning stages, they can be a little favorable. They can be accepted to a partial degree in order to enter into bhakti. But once one has entered into bhakti, the jnana and vairagya become completely unnecessary because they manifest automatically as servants of Bhakti Devi. Therefore, jnana, knowledge and renunciation make the heart very hard, and Bhakti Devi is very soft. Therefore, Brahmaji has prayed in his prayers, jnana prayasam udapashyana mantra eva. Jivanti satmakaratam varadiya vatam sthane stita shritikatam tanuvat panobir aprayaso jivajito aprayaso ajita jito slaitis kaisichirokyo. Therefore Brahmaji has said, there is no need to endeavor for knowledge or renunciation. Hey Bhagavan, your devotees who hear from, those who hear from your devotees, they never try independently for the attainment of knowledge. Instead, by performing seva to the kirtan of your name, form, qualities and pastimes, even though you are uncontrollable, you become controlled by such a srota, by such a hero. Therefore, that nirvishesh jnana, which propounds the non-difference between jiva and brahm, is completely contemptible and completely rejectable in all ways. Therefore, devotees make no separate endeavor for all this, Jiva Goswami is saying. By hearing Harikatha, we achieve renunciation and knowledge automatically.
Atayev, agya vyakti hi ज्ञान को भक्ति का साधक कहते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं कहते हैं। अरे ज्ञान की तो बात क्या है, ज्ञान के द्वारा जो साध्य वस्तु है मुक्ति, उसकी अपेक्षा ही भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन हुआ है। राजन पतिर गुरुर अलंग भवतांग जदूना इत्यादि में मुक्ति ददाति कर ही चितस्मान भक्ति योगस। हे परीक्षित, भगवान मुकुंद स्वयं पांडवों और जदवंशों के स्वामी, गुरु, इष्टदेव, सुहिर, कुलपति और पालक थे। वे कभी कभी उनके आज्ञाकारी दास भी हो जाते थे, परंतु भगवान ऐसे जनहितकारी होते हुए भी भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, किंतु प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं, नहीं देते हैं। मुक्ति सहज है, प्रेमाभक्ति बहुत ही गंभीर है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि भागवत के श्रवण करते समय महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमारे पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है। मन ही मन में खेद करने लगे। उस समय सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझ करके मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन करके बोले, क्या सुखदेव, जिस कुल में भगवान का अवतार होता है, उस कुल की अपेक्षा जिस कुल में भक्ति का या भक्त का अवतार होता है, वो कुल श्रेष्ठ है। भगवान के अवतार जिस कुल में होता है, उससे श्रेष्ठ है जहाँ पर कि भक्तों का अवतार होता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा वशीभूत होता है। ऐसे किसी के कुल में जन्म निश्चय नहीं होता है, इसलिए पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है, यह बात ठीक है, किंतु उसमें भक्त का अवतार हुआ है। पांडव लोग उसमें जन्म लिए हैं, जिनके यहाँ भगवान जाते हैं और उनके आदेश को पालन करते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं, पानी पिलाते हैं, रथ हाँकते हैं और सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सौभाग्य है, ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि दूत का कार्य करते हुए उनके दास भी हुए हैं। भक्ति व्यतीत किसी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। क्यों? भगवान उपासकों को भले ही मुक्ति दे दिया करते हैं, उनका नाम मुकुंद है, किंतु प्रेम भक्ति को जरा छिपा करके रख। किसी किसी का कहना है भक्ति देने से भक्ते के वशीभूत हो जाएंगे भक्तों के, इसलिए उनको कष्ट होगा, किंतु बात गलत है। भक्ति क्या है? आनंदमय वृत्ति है कृष्ण की, लादरी शक्ति, ये भक्ति है। इसलिए भगवान को उसमें आनंद ही होता है, भक्त के वशीभूत होने में उनको कोई कष्ट नहीं होता है। यहाँ पर इस श्लोक में मुक्ति ददाति कर ही चित, कभी माने क्या, भगवान सब समय सभी भक्तों को प्रेम भक्ति दान नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जब तक प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा नहीं जग जाती और उसमें कुछ कामना वासना उसके हृदय में रहे, तब तक नहीं देते हैं। किंतु भक्त जब योग्य हो जाता है तब उसको देते हैं प्रेम। जैसे उदाहरण देकर के कहा है, स्नेहमयी जननी जिस प्रकार अपने रोगी संतान के लिए रसगुल्ला खीर छिपा करके रखती है, उसको नहीं देती, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको देती है, और इसका फिर स्वास्थ्य ठीक होने पर इसको देगी, इसमें दया है, क्योंकि वो हजम नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसके अंदर में कामना वासना है, हरिनाम करते हैं हमको रुपया आ जाए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो छेद के बहाने भक्ति वहाँ से निकल जाती है और उसको धन इत्यादि प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसलिए खबरदार, हरिनाम करते समय इन चीज़ों से सब समय दूर रहना, कभी प्रतिष्ठा की, रुपये की और कोई चिंता हृदय में नहीं आने पाए। हाँ,
therefore, some foolish people think that Jnana and Vairagya are limbs of devotion, but an intelligent person will never say so. Therefore, Mukti, Brahma, becoming one with Krishna, is rejectable always, and Srimad Bhagavatam has rejected that from the beginning. Therefore, Buddha is speaking very fast. Sukadev Goswami said, hey Pariksit Ji, Krishna, who is the Sudip, the well-wisher, the Palak, the maintainer, the Raksha, the protector, and the master of the Yadu and the Pandav dynasties. What else could remain for you? Therefore, Krishna easily gives mukti, but Prema Bhakti he keeps covered. Therefore, mukti is easily attained, but this prema bhakti is supremely rare and not attained so easily. Therefore, Pariksit Maharaj, he said, O Gurudev, it seems that no avatar of Bhagavan has appeared in the Puru dynasty. Therefore, Sukadev Goswami, understanding the mind of Pariksit Maharaj, because Pariksit Maharaj is in that dynasty, he said, no problem. Because Bhagavan is not so much concerned with the dynasty, he is rather concerned with the bhakti in the heart of the devotee. Therefore, Pariksit, in the dynasty of Puru, many great devotees have appeared, especially the Pandavas. What to speak of Krishna appearing in a dynasty, Krishna served the Pandavas by massaging his horses, by becoming their messenger, by doing many, many different types of seva. Therefore, Krishna served the Pandavas. Therefore, he showed he is only controlled by pure devotion. Krishna has no concern with this dynasty or that dynasty. Therefore, Mukunda, one name for Krishna is Mukunda because he gives mukti, but bhakti he keeps a little bit covered. Some people think Krishna keeps bhakti covered because if Krishna is controlled by his devotee, then Krishna will suffer pain. But this is a very foolish thing, because bhakti gives extreme happiness to Krishna. And when Krishna is controlled by the pure devotee, he also receives great happiness. Therefore, But Krishna does not give devotee prema bhakti until the last. Until he sees that devotee is not very restless and eager to achieve bhakti, then Krishna will not give it. But it's not that Krishna will never give it. When qualified, then Krishna will also give bhakti. The example is given here by Sri Krishna Chakravarti Thakur. The mother, she has a diseased son. Therefore, she has many rasgullas, sweet rice, malpuras, burfi. But she is not giving the son because the son is diseased, and if he takes that, then his disease will increase. But it's not that she has no intention to give. When the son is cured of disease, then she will happily give all these things because she is keeping them only for him anyway. Therefore, as long as there is some kama vasana, some material desire in the heart of the sadhak, while chanting Harinam, the sadhak may think of money, may think of women, may think of pratishta, then Krishna does not give prema bhakti because that devotee is unqualified and desires other things. Therefore, be very careful. When we chant Harinam, we should never think of women, money, name or fame. Otherwise, these things will come very easily, but prema bhakti will not come. Therefore, sarasavadam.
Hare Krishna. Sita Devi from England, she is waiting for the doctor. Srila Akinchan Maharaj is very, very sick. So doctor needs to go and attend him immediately. Prema Mai Devi from England. The doctor can go with her.
Ke bimar ache?
Akinchan Maharaj.
Akinchan Maharaj.
Is Dr. Prem Mai here? If she is here, please contact Sita Devi from England.
England?
I don't know.
Dr. Prem Mai is at home. If I do Shantar Matra Jakar,
Hare Krishna. Jagdish Prabhu, who served in kitchen and he had dispute with someone local person, please contact me. Thank you. Hare Krishna.
Jagadish from America.
Jagadish from America. Thank you.
Kishi. Gyan Pradhan Shastro mein bhakti ki apeksha ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया गया है, उसके संबंध में बतला रहे हैं। वामन अवतार में सर्वशक्तिमान और सब गुणशाली होते हुए भी भगवान उपेंद्र के रूप में इंद्र के छोटे भैया होकर इंद्र की सब प्रकार से पोषण करते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, किंतु वामन अवतार में इंद्र के छोटे भैया होकर के जन्म लिया और उनको उच्च आसन दिया करते हैं। तो इसमें भगवान की हीनता नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कृपा करके ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति देवी भी उन्नत हो करके कहीं पर ज्ञान अंग के रूप में दिखाई पड़ती है, ये उनकी कृपालुता है। क्यों? भक्ति नहीं रहने से कर्म योग इत्यादि कोई अपना फल नहीं दे सकता। ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर जी अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए भक्ति की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, जो लोग भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं, भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता, भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल इत्यादि शास्त्र वचनों में जो ज्ञान के साधक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की साधना करते हैं, वहाँ ज्ञानांग के रूप में भक्ति देवी रहती। यदि भक्ति न रहे तो ज्ञान अपना फल जो मुक्ति है वो नहीं दे सकता है, इसलिए वहाँ पर भक्ति गौण रूप होने से भी श्रेष्ठ है, इसी को बतला रहे हैं। वहाँ भक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से सिद्ध होगी, यहाँ पर ज्ञानांग के रूप में है। भागवत में ऐसी भक्ति को सात्विकी कहा गया है, पहले बतलाए। जो जिस भक्ति के द्वारा मुक्ति होती है वह भक्ति सात्विकी है, अतः वहाँ भक्ति का निर्गुणत्व किस प्रकार से प्रमाणित होगा, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी एक उदाहरण दे करके बतला रहे हैं। आठवें स्कंद में वामन देव की लीला का वर्णन हुआ है। वामन देव परम स्वतंत्र सर्वशक्तिमान अप्राकृत सब गुण संपन्न होकर के स्वेच्छापूर्वक देवराज इंद्र के छोटे भैया हुए, और उन्होंने बलि महाराज के निकट उन्हीं के लिए, इंद्र के लिए ही बलि महाराज के निकट त्रिपाद भूमि की भिक्षा ग्रहण करने से बहाने अपने दो पग से स्वर्ग और मर्त्य को नाप लिया, और महाराज बलि को पताल में भेज करके स्वर्ग इत्यादि का राज्य इंद्र को दे दिया, है? उनका पालन पोषण किया। वामन देव उपेंद्र नाम ग्रहण करके उपेंद्र छोटे भाई के छोटे भाई बने, और इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता की भांति सदैव सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार उनका पालन पोषण करने से क्या विद्वज्जन उपेंद्र भगवान को सचमुच इंद्र की अपेक्षा छोटा समझेंगे? नहीं, ये भगवान की कृपालुता है। इसलिए भगवान वामन देव का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं, क्योंकि जीव साधन के द्वारा जितना भी महत्व की तरफ में बढ़ता है उतना ही उसके जीवत्व का विकास होता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं, उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता का भी विकास होता है। जितने भगवान भक्तों के वशीभूत होते जाएंगे उनकी भगवत्ता का चरम प्रकाश, गोपियों के सबसे अधिक वशीभूत हैं, उनकी भक्ति का अत्यंत पराकाष्ठा है। तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान ने इंद्र का छोटा भाई बनकर इंद्र की रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। विचारपूर्वक देखा जाए तो भगवान की इस लीला में उपेंद्र की इंद्र के प्रति करुणा ही दिखती है। भगवान स्वयं स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होकर के स्वेच्छापूर्वक इंद्र के छोटे भाई बने और अपने को उपेंद्र कहलाया, और इंद्र की प्रधानता दी, इसमें भगवान का कुछ भी अपकर्ष नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान प्रधान शास्त्रों में जो ज्ञान को भक्ति का साधक बतलाया गया है और भक्ति का अपकर्ष दिखलाया गया है, भक्ति दया करके उन्नत होते हुए भी उसके फल मुक्ति को प्रदान कराती हैं, इसलिए भक्ति का उपकर्ष अपकर्ष नहीं उत्कर्ष ही साबित होता है। बस
in some shastras we see, especially Gyan shastras, we see the predominance of the concept of liberation and the achievement of jnana. In those shastras, it appears that Bhakti Devi is neglected and Mukti is established. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur gives a very, very refined analysis of this point. He says that Vamadev, despite being the independent Supreme Personality of Godhead endowed with unlimited potencies, still he appeared as Upendra, the small brother of Indra. It seemed that he took help from Indra, and he even gave a big seat to Indra. But still, this does not mean that Bhagavan Vaman had any shortage or was lacking anything. We should understand this is the mercy of Vamadeva giving respect and position to Indra. Therefore, in the same way, we should understand that Bhakti Devi, she is predominant. But still, because of her mercy, she is giving some support to Jnana. Therefore, Bhakti is not attained as a result of Jnana and Karma. She is independent, but Jnana and Karma cannot give any result independent of Bhakti. Therefore, Bhakti Mishra Sadhan, when Bhakti is used as a sadhan, as a practice to achieve liberation, this is Bhakti Devi's mercy. Because without Bhakti Devi, no one can get liberation anywhere. Therefore, Bhakti out of her mercy remains as a limb of Jnana. But it doesn't. This is not the case. This is her mercy. Even though she is predominant, out of her independent desire, she can remain secondary to give the fruit of Mukti to the Jnanis. Therefore, Vishwanatha Chakravarti Thakur gives discussion here. Upendra. Upendra means the small Indra or the brother of Indra. Therefore, Bhagavan appeared as the small brother of Indra, and on behalf of Indra, he went to beg 3 steps of land from Bali Maharaj. Bali Maharaj had stolen the whole universe from Indra, including the heavenly planets. Therefore, on behalf of Bali Maharaj, Vamadev went there. Therefore, he begged 3 steps of land, with 2 steps of land, he took the whole universe. And he pushed Bali Maharaj down to Patalok. And he returned Swarga and the other planetary systems back to Indra. But we should not think that Bhagavan was really the small brother of Indra. He wasn't begging any chapatis from Indra. We should understand that he is independent and everything is possible for Bhagavan. But out of his mercy to Indra, he accepted a position. Therefore, this is the greatness of Bhagavan. That much Bhagavan is controlled by a devotee, that much he manifests his being Bhagavan. Especially when he is controlled by the gopis, at that time he's Bhagavata, his quality of being the Supreme Personality of Godhead reaches its topmost limit. So that was a good point. Therefore, in the same way, Bhakti is not dependent on Jnana. Jnana is dependent on Bhakti. But Bhakti, out of her mercy, accepts a secondary position, even though she is prominent, to mercifully give liberation to the Jnanis.
ॐ ज्ञानचिरं तस्य ज्ञानं ज्ञानकलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गोदशन्द्रय राधिकाय फलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः सकृन्नायन गोचरे कृतदाश्रुजालाकुला प्रफुल्लकमलक्षणा प्रणयकाधर श्रीमुखा न गौरचरणं जहासि कदापि लोतो लोकोत्तर स्फुरन्मधुरमाणवं नव नवान् रागोन्मद
असल में चतुर्वेदी से
Kairalyam narakayate trishapurakashapushpayate durdantandriyakalasarpachatali krodhkatatamsyayate vishrampurnasukayate vidimahendadishtakitayate yakkaranyakitakshavayababhukham tam namgoramevastumaha. Written by Srimad Chungavidya Avatar Prabhupada Saraswati Pad, gives some inkling of the glory of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Here, Kaivalyam Narakayate, for someone who has received that mercy, then Kaivalyam becomes merging with the impersonal Brahman, it appears like Narak, like hell. Because in that state there is no opportunity to serve the Lord. This is shown vividly by Sri Sarvabhauma Bhattacharya when he came before Mahaprabhu and he put this verse, Tate Nukampam Sushami Shamanam Gunjami. At the end he said, Mukti Pade Sadaya Bhakti, rather he changed it to, he wanted to change it, Bhakti Pade Sadaya Bhakti. He said, everyone, bhaktis, they feel distaste for to think of the concept of mukti. So therefore, it is like hell. Whereas, Kaivalyam at the end of Srimad Bhagavatam, described actually as the prayojana, in the sense of kevala bhakti, exclusive bhakti. Then, Srividyashaku, then the glories of going to the heavenly planets, the Nandan Kanas, the Asaras, they appear like some imaginary phantasmagoria, like a flower in the sky. There's no such thing. This is seen that a person is like Vishwamitra Muni. He, just by hearing the ankle bells of Mamata, he fell down and lost his sadhana and his sadhana for another 60,000 years. Kine punye martya lokam vishante, those people who attain even that position and then again they fall down. It is just like a bubble, yasya kanishma sattakala matavaham yajivanti lo madhoja jivadantana. It's like the universe is like bubbles in the Karanarnava, the ocean of the causal ocean. They're coming and going. The lives of Brahma and Indra and so on, they're similarly insignificant. Vishwampur Sukhaya Tilakcha.
When you'll keep, give me that book.
I want it. Dhrnathendri Kala Sarvapatavi Kodhatam Chayate. The sentence, the worst enemy in this world are very difficult to know senses. They appear like the snakes who have been descended and had their fangs extracted. They have no more potency to bite than give any poisonous effect. And persons like Arias Thakur, who chant Krishna, they are able to easily defeat Mahamaya. Therefore, Yamunacharya, he says, Yadavati Mamacheta Krishna Padaravinde Navanavara Sagamana Jitaramasamasi Padavati Patanari Sangame Svaryamani Bhavati Mukavikara Krishna Nishti Kalamukha. Ever since I've been engaged in the activities of hearing the lotus
the religious views see God and Krishna and finding newer and newer pleasure in them. Remember, whenever somehow I think of the mundane so-called pleasures of material sex life, I want my lips curl with the state and I sit at the thought. So this is the state of someone who has actually received the glory of Mahaprabhu's mercy, his sidelong glance of mercy. Everything material becomes insignificant. The world appears full of happiness. Vishwam purnas kathayate. Admani nivedam nasriya pade kori hoino paramasuke. Chaudhi kananandade. The four directions is happiness. And then these so-called great powerful beings like Indra, Brahma, Rudra, they appear like insignificant insects. That, therefore, the proponent of the Sarasatai says that Keshit-sāgara-dūta-ranna-kri-parā-prānanti-mṛtyanti-vāya Keshit-kundara-dāyata-purandara-dishmahā-kekham-chipanto-pahu Ānanda-lodhata-chāva-dīpvada-tayā-pedvaita-chandra-daya Keshit-nodhata-bhanti-dishipunas-chetan-mṛtyot-sade. Someone in the beautiful festival of Chaitanya Mahaprabhu is dancing. Then, like Advaita Acharya and others, as they dance, they appear to divide over the mountains and oceans. And these demigods appear very insignificant. So in this way, you can have some idea of the glory of Mahaprabhu's mercy. Of course, to get the glory of Mahaprabhu's mercy, I have no adhikar, but Gurudev, who has Chaitanya in his heart, he can give him. Therefore, we pray for his mercy on this day.
পরশু গেছিলাম, পরশুনা সাথে দেখা করে এসেছি, ওর বোন
একটু যাও
একটু করে যাবো, ওনার বোন আর ওরাই ততই করেছে, ওরা ই মেয়ে দিয়ে ওষুধ এনেছে, ওষুধ এনেছে এই করছে এই করেছে।
তো মহাপ্রভুজিকে অবদান কার সম্বন্ধে মে কুছ বলো।
माइक लगा करके
और
किस लिए आए, राधा या प्रण महिमा के दृष्ट रहा, अर्थात श्री विष्णु भानु नंदनी के भावों को स्मरण कर आस्वादन करने के लिए विशेषकर मदनाक्ष महाभाव में जिस विष्णु नंदनी जिस जातीय का आस्वादन करती थी, उस आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही गौर कृष्ण बनकर आए और रसिक शेखर कृष्ण करण परम करुण परम करुण के कारण करुणा के कारण उन्होंने उसी राधा जी की भावों की जो शोभा है जो संपत्ति है
अर्थात सीता देवी
रति उल्लास
गंगा माता गोस्वामी
उल्लास रति
গঙ্গা মাতা গোস্বামী লন্ডনের সীতা দেবী ও গেছিল ডাক্তার ও বলছে দেখেছে একটু ওষুধ দিয়েছে আগে চেয়ে ভালো আছে যে গঙ্গা মাতা গোস্বামী সীতা দেবী
হ্যাঁ হ্যাঁ ও গেছিল ওই এলাকা জিজ্ঞেস করবেন বলো আগে চেয়ে ভালো আছে ওষুধ দিয়েছে পরশু না কথা বলে
चेतो दर्पण माजन भव महादावा अग्निदेवापण श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्या मधु जीवन आनंद मुनि वर्णन इत्यादि। अभी सुने कि महाप्रभु कैसे अपने अवदान कैसे शिक्षा दिए, हम लोगों का प्रश्न है कि इस शिक्षा से हम लोग कैसे जीवन को अपने को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहे चेतो दर्पण माजनम, हे जीव हे साधको पहले अपने चित्त रूपी द्रवण को साफ करो। साधक पूछता है हे प्रभु हे गुरुदेव हे वैष्णव हे साधुजन, उस चित्त को कैसे साफ किया जाएगा? बाहर का दर्पण हो तो उसे साबुन से किसी सोडा से साफ किया जा सकता है, परंतु हृदय रूपी चित्त कैसे साफ होगा? इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामी कार्य गौदानी जी सर्व शक्ति, अर्थात संतों के संग में रहकर साधु संग में रहकर हरि कथा सुनते सुनते जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जब जीव गुरु पदाश्रय करता है और गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरुदेव जो अप्रकट वृंदावन से उस कृष्ण सेवा भावना की जो सेवा भावना रूपी जो बीज को लेकर आते हैं उसी रूप में मंत्र के रूप में इसी बीज को साधक के हृदय में बपन कर देते हैं।
अनाउंस करते हुए उन्होंने किसी अनाउंस अच्छा आज के
साधक के हृदय में बीज काल के सब जागे ही कर दिए
ऊपर की ओर
एक कीर्तन और स्मरण के द्वारा उसको सिंचन करते हैं। कैसे नाम करना चाहिए महाराज जी बोल रहे हैं नाम नामी कार्य बहुगा, अनेक प्रकार के नाम है, प्रमुख दो प्रकार के गौण और मुख्य नामों में भी जो राधा जी से गोपियों से संबंधित है ब्रज के नाम है वह मुख्य नाम है। इन नामों को जैसे ही हम लोग स्मरण करते हैं जैसे राधा दामोदर, राधा दामोदर कहते ही राधा दामोदर की लीला कैसे हुई, वे राधा जी के दाम में कैसे बधे वह लीला स्मरण हो आती है। राधा रमन राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ राधा गोविंददेव, अर्थात इन नामों को स्मरण करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी नामों से सर्वोपरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में समस्त नाम में जितने भी प्रकार के नाम हैं समस्त नाम इसके अंदर हैं। कैसे भगवान की श्याम सुंदर की राधा जी की श्याम सुंदर की लीला दो प्रकार की है, विप्रलंब और मिलन, दो ही प्रकार की लीला है किसी प्रकार की नहीं है। इस महामंत्र में दोनों प्रकार का है मंत्र, हरे कृष्ण मिलनात्मक, जैसे ही साधक हरे कृष्ण कहता है, दो दिन पहले ही महाराज जी से श्री मुख से सुना वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधीवा न चान्य पीड़म बलिदास पीहा, उसमें कहते अवधि जो श्रवण कीर्तन है उसकी अवधि जो मोक्ष की जो अवधि है श्रवण कीर्तन उसमें भी हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देके बताया, हरिदास ठाकुर जी कैसे 300,000 नाम जप करते थे और उसमें रूप गोस्वामी जी श्रील सनातन गोस्वामी जी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी भाव बताया कि वे कैसा नाम करते थे, हरे कृष्ण कहते ही अपनी स्मृति देह स्मृति हो जाती थी और साथ ही साथ नाम लेने के साथ ही साथ कैसे भाव राज्य में प्रवेश करके देह स्मृति को भूलकर शुद्ध रूप में राधा जी की सेवा में संलग्न रह जाते थे। इसके विषय में यदि हम लोगों को और ज्यादा जानकारी करनी है तो बिना पुष्पांजलि पढ़ें कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठकर इसी नाम का जाप करते 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 भूल जाते थे अपनी देह को और देह को भूल कर शुद्ध देह में अर्थात मंजिल रति मंजरी के रूप में श्री विष्णु हनुनंदन की कैसे मन चाह सेवा करते थे। ऐसे नाम को ये नाम उनकी संख्या को भी पता नहीं चलती थी कि घंटों उनकी समाधि लगी रहती थी। ऐसे नाम महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दी है साधक प्रारंभिक दशा में इस नाम को करे और कैसे करे साधु संग में रहकर निरंतर उसी नाम की चिंतन करता हुआ। अभी अभी हम लोग श्री गुरु जी के मुखारविंद से सुने कि नाम करते समय यदि संसार की कोई भी चिंता आई कोई भी किसी भी प्रकार की नाम देव तो कल्प वृक्ष है कल्प तरु है वे अपनी आप हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करके जो देने वाली वस्तु है उससे अंतर हम को वंचित कर देंगे। इसलिए हम लोगों को अपने चित्त के दर्पण को साफ करना है तो गुरु पदाश्रय करके सतत साधु संग में रहकर नाम करें इससे चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाभव अग्नि निर्वापण जो हमारे तावा नल है जो हृदय मित्र ताप से हमारा हृदय जल रहा है वह हृदय में शांति प्राप्त होगा नाम करने से साधु संग करने से धीरे धीरे तावा नल समाप्त होगी। सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं संसार दावा नल निरोधा त्राणा करुणा गना गणत्व प्राप्त से कल्याण गुणा अवर्ण सर वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। गुरु महाराज जी कैसे हैं संसार रूपी दावा नल में जले हुए अपने साधक अपने शिष्य और शिष्या के हृदय में परम करुणा का संचार कर उस दावा नल को जड़ से समाप्त कर प्रेम भक्ति पिलाकर उसे सुखी करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावे भी निर्वापणम धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार से साधक अपनी भक्ति राज्य में प्रवेश करता जाता है उसका यह दावा नल दूर होता चला जाता है। कैसे कैसे करना चाहिए भजन तृतीय श्लोक में कहते हैं त्रादपि सुनी चेन तरोपि सहिष्णुना अमानी नाम मान देन कीर्तन या सदा हरि। हम लोगों को कैसे भजन करना चाहिए इसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे तृण से भी हम लोगों को तुच्छ समझ कर एक बार महाराज जी की स्मरण हो आती है। हम लोग मैं अपनी बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो हम लोग अपनी अपनी मैं दिखाते हैं ना दीनता ये सब कपटता है सचमुच दैन्यता कब हृदय में आएगी दीनता कब हृदय में आएगी जब भक्ति देवी हृदय में पदार्पण करती है स्वतः ही दीनता हृदय में आ जाती है स्वतः ही तनाजी तभी सुनिश्चित समझने लगता है। प्रातकाल की सभा में हम लोग सुने कि महाप्रभु कहते हैं ना प्रेम गंदो गंदो अभी दरार अभी में कैसे प्रेम की भी गंध नहीं है ये कौन कहेगा यदि इस बात को हम लोग कहें तो परम दाम्भिक है हम लोग ऊपर से कहते हैं परंतु महाप्रभु इस बात को क्योंकि महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं क्यों क्योंकि वे तो भक्ति के दाता है प्रदाता है उनके लिए ये बात सार्थक है। अर्थात जैसे जैसे भक्ति हृदय में आती है वैसे ही वैसे यह श्लोक में साधक प्रतिष्ठित होने लगता है प्रणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना सहन शक्ति आ जाती है उसमें अमानी नाम हमेशा ही दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान की इच्छा न करके नाम कीर्तन में लगा रहता है। कब होता है ये जब कम से कम साधक रुचि स्थिति में आ जाता है तब इसकी कुछ कुछ झलक इस श्लोक की कुछ कुछ झलक साधक के हृदय में प्रतिबिंबित होने लगती है। जब हम लोग प्रणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानी नाम मानो देने कीर्तन या सदा हरि इस श्लोक में प्रतिष्ठित होकर भजन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तब क्या होता है श्री कैरव चंद्रिका जैसे रात्रि में चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी खिल जाती है और सूर्य के निकलने पर कमल अपने आप में खिल जाते हैं ठीक उसी प्रकार जब हृदय में नाम रूपी सूर्य हृदय में उदित होने लगते हैं, तब हृदय की अंधकारता अज्ञानता दूर होकर हृदय खिलने लगता है। भक्ति भक्ति रूपी जो गुरु जी बीज दिए हैं वह प्रस्फुटित होकर खिलने लगता है, उसमें से सुगंध आने लगती है। किस प्रकार की सुगंध? भगवत अनुभूति की कुछ कुछ भगवत पहले तो भगवत अनुभूति तो पीछे हो गई, उस समय अपने गुरु की अपने वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि होने लगती है। हम लोग गुरु कृपा की उपलब्धि नहीं करते, वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि नहीं करते और कहते हैं हमको कृपा करिएगा कृपा करिएगा। अगर सचमुच हृदय से स्मरण करें कि कहां हम लोग कीड़े थे, नरक के कीड़े थे, संसार में डूबे हुए थे, वहां से बाल पकड़ कर खींच कर ना चाहते हुए भी लाए हैं गुरु वैष्णव और हम लोगों को भक्ति रस पिलाकर दिखला रहे हैं कि देखो यह कितना सुखमय जीवन है। ये जब हम लोग उपलब्धि करते हैं, इसकी अनुभूति थोड़ी थोड़ी इसी करने लगते हैं, जब श्री कैरव चंद्र का वितरण
बसों का समय बदल कर बसों का समय बदल कर
बधाई दी। हाँ, प्रेम की इच्छा है कि प्रसाद दिन का गोल्डन मशीन
पचास बार बोलो।
हाँ चलो
पचास बार बोलो,
इन लोगों की इच्छा है। तो मैंने अब 8 बजे का प्रस्थान बस वालों को सबको फोन करके जल्दी बस वालों को फोन करके जल्दी बुलाया है और 8 बजे का प्रस्थान कर। ऐसी स्थिति में लोग सामान लेके घरों से आएंगे तो आप प्रवचन करेंगे या
नहीं?
प्रवचन
जरूर करें।
कमल के सुगंध से कितने
बदलते
हैं
था जी। यहाँ पर भोजन करके 10 बजे के करीब ले
जाए
ठीक था?
ठीक नहीं था पहले में, शुरू में भी मैंने सुबह यहाँ से 8 बजे तक में निकल गया तो नाश्ता जो है
जैसे
अच्छा है कि लोग अनाउंस अनाउंस कर देते हैं कि लोग अनाउंस करते हैं लोग सामान लेके आएंगे अब नजीद ऐसे में फिर प्रवचन करने से जो सामान का रखा तो कल की क्लास ना हो तो
कहो तो हम प्रवचन नहीं करेंगे।
फिर जैसे आप सामान लेके आएंगे तो प्रवचन ना ही होते जाएगा।
यदि आप कुछ देना चाहते हो तो क्या दीजिए?
हम नियम नहीं तोड़ना चाहते
ठीक है
और तुम लोग हमारा नियम तोड़ा है।
क्या दीजिए? क्लास हो जाए हम लोग वही दीजिए कि आपके देह में तड़प तड़प कर हम लोग भजन करें, तड़पन आए, कैसे उत्कंठा आए, कैसे हम ठाकुर जी के वैष्णवों के भावों में विभावित होकर कैसे भजन करें। ये भजन की उत्कंठा हृदय में जगने लगती है तब उसको यथार्थ में समझ में आता है कि ये यदि धन जन परिवार मिला भजन करते मैं तो समझ लेना ठाकुर जी हमको अपने मूल धन से वंचित करके एक जड़ीय चीज देकर वंचित कर दिया है। परंतु सावधान शिक्षा महाप्रभु की धारा में आकर संतों के संग में रहकर ये कम होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है स्वभावतः ही यथार्थ युक्त वैराग आने लगता है। जैसा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में देखते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी अद्वैताचार्य जी के घर पर पहुंचते हैं। जब महाप्रभु संन्यास लेकर पहुंचते हैं पहली बार तो महाप्रभु 10 दिन रहते हैं, दास गोस्वामी जी वहाँ 10 दिन रहते हैं। 10 दिन के बाद में महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा जय जय प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब रघुनाथ बहुत सुंदर निर्देश और आदेश दिए हैं महाप्रभु ने, वह हमारे लिए पालनीय है, बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में। क्या उपदेश दिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को? स्थिर भैया कर जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल, अंतर करो निष्ठा बाजी लोक महिभार, अचिराते कृष्ण तुम्हार परवीन उद्धार। हे रघुनाथ तुम पागल मत बनो, मानो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्यार से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग साधु संघ में शुरू शुरू में आ जाते हैं, पहला पागलपन चढ़ता है, घर छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं और घर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर दे या कोई सेवा छोटी सेवा बता दी तो कहते हाँ हम इतने बड़े घराने के बच्चे हैं ऐसा करेंगे ऐसा हम लोग करेंगे, बस भाई यहाँ से मन खराब होने लगता है और भाग कर फिर हम लोग संसार में चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा मौका स्थिर भैया घर जाओ ना हो बस उनका मतलब भी पाए लोग भारत के हमको कह दिया रोकने के लिए बस इसको खड़ा करके समाप्त करती हूँ। अर्थात हम लोगों को स्थिर रहकर भजन करना चाहिए यही महाप्रभु की शिक्षा है। दूसरी बार महाप्रभु फिर रघुनाथ गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं बहुत सुंदर शिक्षा है। यदि इस शिक्षा में हम लोग प्रतिष्ठित हो गए तो भजन बन जाएगा फिर भजन हमसे दूर नहीं है। क्या शिक्षा दी इन भालो ना खाइए भालो ना पहिरवे अमानी मानस ऐसी लाइन रह गई ना ग्राम कथा कही वे ना सुनी वे। अर्थात हे रघुनाथ तुम मुझसे पूछना रघुनाथ दास गोस्वामी जी हाथ जोड़ पूछते हैं जय प्रभु आपने मेरा घर क्यों छुड़ा दिया क्या करना चाहिए मुझे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहते हैं हे रघुनाथ सबसे पहले यदि भजन करना चाहते हो तो क्या करो ग्राम कथा ना कही वे। इसी बात को रूप गोस्वामी जी उपदेश अमृत में कहते हैं निंदा आदि सुंदर संग लब्धा किसका संग प्राप्त करो जो किसी का दोष नहीं देखता है वो ही बुराई करेगा दूसरों की भलाई करेगा क्योंकि वो ही करेगा जिसके पास साधन भजन में कमी है साधन भजन अच्छे से नहीं करता 24 घंटे के अंदर 24 घंटे अपनी भगवान के भजन में साधन में सेवा में अपनी एनर्जी नहीं देता है उसी को ये दोष और सब दिखाई देते हैं। रघुनाथ तुम सावधानी से कभी भी जीवन में राम कथा नहीं करना क्यों ग्राम कथा जिसकी भी हम लोग क्रिटिसाइज बुराई करते हैं क्या होता है बुराई करने वाला पवित्र हो जाता है करने वाले के सारे वैसे ही वो बेचारा मलिन होता है और उसको साफ करके अपनी और मलिनता को बढ़ा लेता है। अर्थात ना सुनना और ना कहना भालो ना खाए हुए भालो ना कहे हुए भालो माने अच्छे अच्छे जो मन में आ रहा है जीवा को देते चले जाओ क्या होगी जीवा अजितेंद्रिय हो जाएगी भजन में नहीं लग पाएगी और भजन से निकली और बस रसातल में भक्ति से च्युत कर देगी। और क्या करना है सदा कृष्ण नाम लेवे और हे रघुनाथ इससे ज्यादा पूछना कुछ रूप से पूछ लेना ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं। मानो रघुनाथ जी को नहीं महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा दी है कैसे हम लोगों को भजन करना चाहिए संबंध युक्त अनर्थ रहित भजन करने से अति शीघ्र ही हृदय पवित्र होता है उसमें राधा की लीलाओं का स्मरण होता है। इसी शब्दों के साथ अपनी भक्ति का प्रकाश कर
Hare Krishna, there is an announcement. The Sandwala, he is saying that the devotees have taken chairs